नमस्कार, स्टूडियो की घड़ी में समय हुआ है शाम के 4:30 बजे का और हम आपके साथ जुड़ गए हैं न्यूज मैगजीन प्रोग्राम परिक्रमा लेकर। श्रोताओं, आधे घंटे के इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचार होंगे। अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं से भी हम जुड़ेंगे और जानेंगे कि उनके क्षेत्र में क्या कुछ खास हो रहा है। इसके अलावा खेल गतिविधियों पर भी हमारी नजर रहेगी। उन महान लोगों को भी याद करेंगे जिनकी आज है पुण्यतिथि, जयंती या जन्मदिन। आज इस कार्यक्रम के साथ मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी और मेरे साथ हैं मेरी सहयोगी रेणु कटारिया। आप सभी को नमस्कार और रेणु आपको भी नमस्कार।
नमस्कार, हेलो एंड गुड आफ्टरनून एवरीवन। यू आर ट्यून टू परिक्रमा ऑन 100.1 एफएम एंड एज देवेंद्र हैज ऑलरेडी इंट्रोड्यूस्ड, आई एम रेणु कटारिया एंड माय को होस्ट देवेंद्र। एंड फॉर यू डियर लिसनर्स, वी हैव अ सिलेक्शन ऑफ न्यूज, आर डिस्कशन सेगमेंट डेटलाइन इंडिया, रिपोर्ट्स, कैप्सूल्स, बिजनेस ट्रिब्यूट्स एंड मच मोर, एंड ऑल दीज ओवर द नेक्स्ट 30 minutes. So let's begin with the news headlines first. Prime Minister Narendra Modi says Vishwakarma Yojana is a roadmap to utilize thousands of years old skills to develop India.
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किसानों की आय बढ़ाने के लिए कृषि आधारित उद्योग को बढ़ावा देने पर जोर दिया।
यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह says government to uproot Nazism from the country before March 2026.
और केंद्रीय खाद्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने तिरुपति मंदिर के लड्डुओं में पशुओं की चर्बी के इस्तेमाल मामले की जांच की मांग की।
सो देवेंद्र, इट इज नाउ टाइम फॉर आवर सेगमेंट डेटलाइन इंडिया इन विच वी टेक अ लुक एट द डेवलपमेंट्स टेकिंग प्लेस एट द नेशनल और ग्लोबल लेवल। एंड टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट वर्ल्ड क्लीन अप डे। And as today is September 20th, a day when we unite globally to address the pressing issues of marine debris and waste management, today we are diving into a critical topic as we celebrate World Cleanup Day. This year's theme is Arctic Cities and Marine Litter. World Cleanup Day isn't just about picking up trash, dear listeners. It is about fostering community spirit and encouraging sustainable practices. We are focusing on the Arctic regions which face unique challenges due to extreme weather, costly infrastructure and isolation. The Arctic is a vital ecosystem and it is under immense pressure from climate change and pollution. And this year we want to inspire action, not just locally but globally.
जी, थीम आर्कटिक शहर और समुद्री कूड़ा का उद्देश्य वैश्विक समुदायों को आर्कटिक क्षेत्रों की रक्षा करने वाली टिकाऊ प्रथाओं को अपनाने के लिए प्रेरित करना है, जो चरम मौसम, महंगे बुनियादी ढांचे और अलगाव से संबंधित अद्वितीय चुनौतियों का सामना करते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अपने प्रस्ताव में 20 सितंबर को विश्व सफाई दिवस के रूप में घोषित किया था। सतत विकास में सफाई प्रयासों की भूमिका और अपशिष्ट प्रदूषण में ठोस कमी के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से गतिविधियों के माध्यम से दुनिया को इस दिवस को मनाने के लिए आमंत्रित किया जाता है।
एंड देवेंद्र, क्यों ना हम थोड़ा सा अब इस इश्यू पे अपनी दृष्टि डालें कि व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ मेरीन लिटर। यू नो, वी ऑलवेज टॉक अबाउट लिटर हियर एंड देयर इन आवर सराउंडिंग्स, ऑन लैंड विच इज वेरी क्लोज टू अस, हमारे आस पास जो होता है, बट मेरीन लिटर इज समथिंग विच नॉट एवरी वन इज मच अवेयर ऑफ। तो क्यों ना हम अपने इस प्रोग्राम के थ्रू थोड़ा सा डेटलाइन इंडिया के थ्रू अपने श्रोताओं को, अपने लिसनर्स को इसके बारे में थोड़ा सा जागरूक करें।
बिल्कुल, और मरीन लिटर जो है वो सीधे तौर पर हम सभी को प्रभावित नहीं करता, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से इनडायरेक्ट उसका प्रभाव पूरे ग्लोब पर हमें तमाम स्पेशीज में देखने को मिलता है।
एग्जैक्टली, दिस इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट टुडे। सो मरीन लिटर अफेक्ट्स नॉट ओनली वाइल्ड लाइफ बट ऑल्सो लोकल कम्युनिटीज, स्पेशली इन आर्कटिक सिटीज। डू यू नो दैट मरीन डिब्री कैन इम्पैक्ट फिशिंग, टूरिज्म एंड इवन द हेल्थ ऑफ लोकल पॉपुलेशंस। It is a cycle that needs to be broken. Marine litter presents a huge problem in our oceans, with some scientists warning that by 2050, which is not very far away, the quantity of plastics in the oceans will outweigh fish. In addition to the environmental and health problems posed by marine litter, floating garbage and plastics pose a costly as well as dangerous problem for shipping, as they can be a navigational hazard and become entangled in propellers and rudders. Another problem requiring urgent remedial action is the massive accumulation of plastics, not only in coastal areas but also in the deep sea. This litter is harmful to marine life. Sea creatures can become trapped inside containers or strangled by nets or ropes. And microplastics can also enter the food chain as they are indigestible when swallowed.
खराब अपशिष्ट प्रबंधन के तीन महत्वपूर्ण पक्ष हैं और इसके परिणाम भी हैं, प्रदूषण, जैव विविधता हानि और जलवायु परिवर्तन। संयुक्त रूप से दुनिया के सभी पारिस्थितिकी तंत्रों में अपशिष्ट और प्रदूषण का संचय बहुत तेजी से बढ़ रहा है और पारिस्थितिकी तंत्र के संतुलन और स्वास्थ्य को खतरा हो रहा है। पेरिस समझौते और सतत विकास लक्ष्यों SDG में निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति में योगदान देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस से पहले और उसके माध्यम से सफाई को बढ़ावा देना महत्वपूर्ण है। विश्व सफाई दिवस मनाने के लिए सदस्य राज्यों और संयुक्त राष्ट्र प्रणाली के संगठनों, नागरिक समाज, निजी क्षेत्र, शिक्षा जगत, युवाओं और दुनिया भर के अन्य भागीदारों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय, स्थानीय और पड़ोस की गतिविधियों और कार्यक्रमों को आयोजित करने के लिए आमंत्रित किया जाता है। रचनात्मक प्रदर्शन, पैनल चर्चा, सोशल मीडिया अभियान, प्रशिक्षण सत्र और सफाई गतिविधियां इसमें शामिल हैं।
And talking about the downsides of poor waste management and excessive pollution, Devendra, now let us explore what we can do as individuals to reduce pollution in our surroundings. So there are many ways, but we are just going to list down a few. Let's start with something we encounter every day, and it is single-use plastics. They're convenient, but they contribute massively to pollution. Items like plastic bags, straws, and water bottles may seem harmless, but they can take hundreds of years to decompose. Cutting down on these can make a significant difference. One easy way to start is by swapping single-use items for reusable alternatives. For example, using a reusable water bottle or cloth bag when shopping. And for this, we all need community involvement. Participating in local cleanup events is a fantastic way to make an impact. Have you joined any events recently? So this is for everyone, listeners. Please listen to us. Have you joined any events recently? For those listening, you can find local cleanup events by checking community boards or social media. Even if you can't join, spreading the word helps and every little bit helps. Organizing your own small cleanup with friends or family is also a great option.
जी, और recycling के बाद अगर हम बात करें रेनू, तो recycling एक ऐसी चीज है जिसे हमें अपनाना जरूरी है ताकि हम अपनी इस धरती को बचा सकें, और साथ ही साथ use and throw का जो concept है, चीजों को एक बार इस्तेमाल करना और फेंक देना, ये भी पूरी जो धरती का इकोसिस्टम है, इकोलॉजी है, उसको
डैमेज करता है।
ठीक है, उसमें समुद्र के क्षेत्र भी शामिल है। और अब बात करते हैं रिसाइकलिंग की, तो ये केवल वस्तुओं को कूड़ेदान में फेंकने के बारे में नहीं है, ये जानने के बारे में है कि क्या पुनर्नवीनीकरण किया जा सकता है। बहुत से लोग अपने समुदायों के विशिष्ट नियमों से अवगत नहीं है। उदाहरण के लिए, कुछ प्लास्टिक को पुनर्नवीनीकरण नहीं किया जा सकता, और यदि वे गलत कूड़ेदान में चले जाते हैं तो ये पूरे भार को दूषित कर सकता है। स्थानीय दिशा निर्देशों की जांच करना महत्वपूर्ण है, और 3R के सिद्धांत पर चलते हुए जो कम करें, पुनः उपयोग करें, रिसाइकलिंग करें, हम न केवल समुद्री कूड़े बल्कि सभी प्रकार के प्रदूषण के खिलाफ युद्ध जीत सकते हैं।
एंड सो लेट्स मेक आवर वॉइसेस हर्ड एंड टेक एक्शन टुडे। रिमेंबर एवरी एक्शन काउंट्स नो मैटर हाउ स्मॉल। लेट अस प्रोटेक्ट आवर प्लैनेट वन क्लीनअप एट अ टाइम। टुगेदर वी कैन क्रिएट क्लीनर सीज एंड अ क्लियरर फ्यूचर फॉर आवर प्लैनेट। अंटिल नेक्स्ट टाइम, स्टे इन्फॉर्म्ड एंड स्टे इंस्पायर्ड।
और श्रोताओं, हाल ही में मोदी सरकार ने अपने तीसरे कार्यकाल के 100 दिन पूरे किए हैं, और इस जो उपलब्धि है, 100 दिन में सरकार ने क्या क्या उपलब्धियां हासिल की हैं, इस पर हमसे बात की केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने। आइए सुनते हैं।
वी आर ज्वाइंड बाय अ वेरी डायनेमिक लीडर एंड यूनियन मिनिस्टर हु इज होल्डिंग द चार्ज ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स एंड पार्लियामेंट्री अफेयर्स। सर, द गवर्नमेंट हैज, नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट हैज कम्प्लीटेड 100 डेज ऑफ इज थर्ड टर्म। व्हाट डू यू से अबाउट अचीवमेंट?
सी, मोदी जी थर्ड टर्म इज वेरी हिस्टोरिक। इन द फर्स्ट 100 डेज इटसेल्फ वी हैव अकॉम्प्लिश्ड अनप्रेसिडेंटेड सक्सेस इन टर्म्स ऑफ रीचिंग आउट टू द पीपल थ्रू वेरियस पैकेजेस, वेरियस बेनिफिट्स। First of all, let me tell you, we have already taken decision to spend 15 lakh crore for the welfare of the people of this country. And then if you break up for the women, we are going to spend 3 lakh crore for Nari Shakti, 2 lakh crore for skilling and training of the youth for their better opportunities in terms of getting employment or job creation. And then Modi ji has handed over certificate of 11 lakh lakhpati didis. And then you see the infrastructure, you see in all sectors, the amount of success which we have achieved in last 100 days is tremendous.
Sir, Prime Minister Narendra Modi has given a slogan of Viksit Bharat. How this third term is going to be crucial to achieve this goal?
Prime Minister Modi ji has already given a clarion call to make Viksit Bharat by 2047. The strong foundation has been laid in last 10 years. In the third term, in the first 100 days only, we have taken that particular dream of making Viksit Bharat into a next level. And in the 100 days itself, we have already increased the speed of the implementation what we have seen in last 10 years. Modi ji has given a promise that we will perform with 3 times more focus and more speed. That is why we, all the ministers, are playing the very important anchor role in terms of implementing all the decisions taken by the Modi ji's government. I'm very happy that today we have reached out to every section of the society. No part of India is left out. Every section of the society is today satisfied and they are getting the benefits of the Modi government's welfare steps.
Sir, in the third term, the government has laid a special focus on the welfare and development of youth, women, farmers and poor. What do you say about it?
See, first of all, the amount of support which Modi ji has given to the farmers and for the improvement of the farming style. You know, we have been a tradition of doing the farming, but to increase the capacity of the productivity, to enhance the capacity of the farmers, whether it is an infrastructure issue or credit system or providing better, cheaper fertilizers or better procurement system or creating godown, the storage for the producers of the farmer, the market linkages. Everything is done in such a way today our farmers are enjoying far better life. And then for the women, the special focus of our government is women, not only women empowerment, but women-led development. That is why the Women Reservation Bill has been passed. And it is during Modi ji's third term only, the Women Reservation Act which has been passed will be implemented. And for the youth, the amount of emphasis given for the skilling, for the education, for the job creation, for the youth, it is so tremendous that the youth are the future of country. And the Prime Minister's connect with the youth is so natural. The Prime Minister himself is so youthful in his approach. The youth of the country are directly connected with Modi ji.
Sir, you have just talked about job, and the opposition is also accusing the government that it is not providing enough jobs to the youth. How do you counter this allegation?
All these infrastructure projects and all those important steps taken to provide job opportunities for the youth are really benefiting the younger generation. Now, Modi ji's steps are actually benefiting and empowering the youth, whether it is through the new education policy or through 2 lakh crore being allocated for creation of job for the youth. All other amenities which are, you know, under implementation for creating opportunities for the youth. These are benefiting the youth of this country. That is why youth are, you know, supporting the BJP government and youth are connecting with Modi ji directly.
Prime Minister Narendra Modi has also given a slogan of Sabka Saath, Sabka Vikas, Sabka Vishwas and Sabka Prayas. If you talk about your Ministry of Monetary Affairs, how this vision is reflected as far as the welfare of the minority is concerned?
We have treated every minority community same as any other citizens of this country. So now during my time, I have already told all the minority communities that this ministry is not Muslim-centric ministry. This ministry is minority-centric ministry. And we have 6 minorities in the country. The Muslims, Sikhs, Christians, Jains, Buddhists, and Parsis. And we will take care of all the minorities of this country because Modi ji believes in Sabka Saath, Sabka Vikas, Sabka Prayas and Sabka Vishwas. So this is Modi ji's mantra which we are implementing.
Now we come to our parliamentary affairs ministry. You have brought the Waqf Amendment Bill 2024 in Parliament, which has been referred to the Joint Parliamentary Committee for scrutiny. How is going to efficiently manage the work properties more transparently?
We are going to ensure that the work properties in India are managed in a scientific manner, transparently, with full accountability. And also, we will broad-base the works boards in India. The works boards enjoy so much of properties, but actually it is benefiting them only. It is not benefiting the poor Muslims. So if Muslims are poor, then why work properties are not being utilized for the welfare of the Muslim community? So we are ensuring that as per the recommendation of the Sachar Committee and the Joint Parliamentary Committee of K. Rahman Khan headed, we are going to implement the recommendations given by those committees and to ensure that the work boards in India, which enjoys and owns largest work properties in the world, to use all the work properties for the welfare of the poor Muslims, the women, the children, the weaker section within the Muslim community. They must get the benefit out of this huge work properties we have in India.
Thank you, sir. Talking to Akashvani.
And Devendra, it is now time to go to our regional correspondent. So first we are going to Agartala. The land ports in India experience movement of around 25 lakh passengers annually as figured out in the last year, which is a large scale of footfalls of people, including their staff, officials and workers too. And that includes men, women and transgender also. Given the present scenario of gender discrimination in a few other domains of workplaces, the Land Port Authority of India, or LPAI, has adopted zero tolerance policy towards any kind of discrimination and atrocities against women. The authority has said that it would ensure dignified workplaces with inclusion of several facilities, privacy and dignified security for women and children in all the offices and land ports across the country. We have more from our Agartala correspondent on this report.
The Land Port Authority of India has said that it will make sure that there will be no gender bias and discrimination in any of the offices across the country. Talking exclusively to Akashvani News, Member Finance of the Land Port Authority of India, Dr. Rekha Raikar said that land ports around the country will be given scores based on the facilities provided by them at the land ports with regard to women's safety. Likewise, the land ports will have to see whether there are mobile charger points at the facility to charge the cell phones in case the mobile battery of any woman passenger drains down completely. Besides, the land ports will also have to have the shuttle service for women passengers, given that the LPAs are situated far from the main cities and women employees or passengers do not face any kind of difficulties.
National Trade Facilitation Action Plan 2023 mein ye bataya gaya hai ki aap sare land ports ko gender friendly kijiye, yani ki gents और लेडीज इन दोनों में बिल्कुल भेदभाव नहीं होना चाहिए. जो भी पैसेंजर्स आएंगे जाएंगे यहाँ से या जो भी कार्गो मूवमेंट होगा उसमें आप जहां तक हो सके उसको अच्छा माहौल बना दीजिए. कम से कम 30% हमारा जितना भी वर्कफोर्स है, चाहे कस्टम्स का हो, इमिग्रेशन का हो, हेल्थ का हो, क्वारंटाइन का हो, बॉर्डर गार्डिंग फोर्सेस का हो या हमारा एलपीआई का खुद का हो, वो महिला होना जरूरी है. हम हर लैंड पोर्ट में एक पिंक रूम बना दे. क्या है ये पिंक रूम? ये पिंक रूम का कंसेप्ट ये है कि जहां जहां पैसेंजर्स आते हैं उनके लिए हम एक ऐसा रूम बनाएंगे जिसमें कि सारी सुविधा हो, सैनिटरी पैड वेंडिंग मशीन हो, एक हेल्थ एटीएम हो ताकि उनको जो भी ब्लड टेस्ट वगैरह कोई भी चीज करना है, शुगर चेक करना है, बीपी चेक करना है. इंडिया में मैक्सिमम वीमेन एनीमिक रहती है तो उनका एनीमिक है कि नहीं ये चेक करना है, तो उसकी व्यवस्था हो जाए. और उसके साथ ही वहां पे एक क्रेश या लैक्टेटिंग रूम भी एडजॉइनिंग हो तो एक ही बार में उनको हम कम्फर्टेबल, सेफ और रिसेप्टिव कर सकते हैं.
The senior official of the Land Port Authority of India also said that approval has been received from the Cabinet Committee on Security to modify 66 land custom stations LCS in the country to land ports. The modification of these LCS to land port will immensely benefit in the trade and commerce activity. Besides, passenger movement with 7 neighboring countries like Pakistan, Afghanistan, Bangladesh, Myanmar, Bhutan, Nepal and China.
Presently, 15 locations पे land ports है existing, जो कि 24/7 cargo और passenger का movement करते हैं, और 66 land custom stations को land port में convert करने के लिए, modify करने के लिए cabinet committee of security ने approval दिया है. तो इस तरह से ये जो organization है, ये काफी बढ़ जाएगी, और इसका mandate है कि हमारी जो borders है, इनमें हमारे साथ जो neighboring countries है, उनके साथ अच्छे संबंध के साथ व्यापार और पैसेंजर्स को मूवमेंट करें.
The initiatives adopted by the Land Port Authority of India towards women's safety, free from gender discrimination, cordial trade and commerce activity and seamless passenger movement will certainly inspire other major organizations to evolve with perfect measures to ensure safety, security and privacy of women folks.
Kunal Shinde for Parikrama from Akashvani News, Agartala.
And now, honoring the legacy of Dalavai Sivamma, let's listen to our correspondent.
Dalavai Sivamma, a renowned puppetry artist from the heart of Nimalakunta village, Sri Sachasai district of Andhra Pradesh, has been honored with prestigious Silpaguru Award, one of the highest recognitions given by Government of India in the field of Indian handicrafts. Her award-winning works include depiction of Lord Krishna's life and a 7-foot-tall figure of Viswarupa Hanuman, all created using the ancient art of leather puppetry. For Sivamma, puppet making is more than just a craft. It's a family tradition passed down for generations. With support from her husband, she mastered this art form and adopted it to the changing times. Sivamma's masterpieces are cherished not only in India but also across the world. They are exported to various Indian states like Tamil Nadu, Maharashtra, Telangana and Karnataka, and even to the countries in Europe and America. But Sivamma's true dream is for this art to live on. She is committed to training the younger generation in the art of puppet making so that it continues for many more years. Her goal is clear: to keep this ancient tradition alive for future generations. Dalavai Sivamma's story is a testament to the power of passion and perseverance in preserving our cultural heritage. Sai Sisla for Parikrama from Akashvani News, Vijayawada.
And now we will take you on a tour of India's freedom struggle and recall the events that happened on this day.
In today's episode, we pay tributes to three valiant women freedom fighters who went against the might of British imperialism and laid down their lives for the independence of India.
Remembering the 60-year-old Assamese martyr, Bhogeshwari Phukanani, who laid down a life for the love of motherland on this day in 1942. Born in Bahrampur area of Assam's Nogaon district in 1885, Bhogeshwari was a simple housewife but led massive rebellions in her area and encouraged her 6 sons and 2 daughters to participate in the freedom movement.
After the Barhampur office of the Indian National Congress was seized by the British authorities, the revolutionaries attacked and took back control of the office in September 1942. However, the authorities sent military forces under Captain Finnish to take revenge and crush the revolutionaries.
Bhogeshwari, along with another freedom fighter, Ratan Mala, led the revolutionaries and confronted Captain Finnish. When the captain snatched the flag from Ratan Mala's hand, Bhogeshwari was furious by the disrespect towards the national flag.
She snatched the flag from Captain Finnish's hand and hit his head with the pole of the flag. Enraged by her actions, Captain Finnish pulled out his revolver and fired at Bhogeshwari, who fell down to the ground. She succumbed to her injuries and died on September 20, 1942.
Bhogeshwari is a living testament to the love for motherland and exemplifies that age is never a barrier when national duty calls. We salute the legend of Bhogeshwari Phukanani.
We also remember another Assamese freedom fighter and one of the youngest martyrs of the Quit India movement, Kanaklata Barua, who was martyred on this day in 1942 at the mere age of 17 years. Kanaklata, also referred to as Birbala, was a member of the band of revolutionaries Mrityu Bahini.
Defying the police's orders, she led a group of unarmed villagers to hoist the national flag near a police station in a hometown of Burangabari village in Assam. Kanaklata was shot while hoisting the flag, but even as she fell to bullets, she held the flag high.
The fast patrol vessel ICGS Kanaklata Barua of the Indian Coast Guard, commissioned in 1997, is named after her. A life-size statue of hers was unveiled at Gauripur in 2011. May we continue to be inspired by such courageous souls.
We are also remembering the Irish social reformer and supporter of Indian nationalism, Theosophist Annie Besant, who left us on this day in 1933. Along with Lokmanya Tilak, Besant launched the All India Home Rule League in 1916, which perhaps was the first political movement in India to have regime change as its main goal. She was the first woman to be elected as president of the Indian National Congress in 1917.
As early as 1902, Besant had written that India is not ruled for the prospering of the people, but rather for the profit of her conquerors, and her sons are being treated as a conquered race. She encouraged Indian national consciousness, attacked caste and child marriage, and worked for the Indian education. As editor of the New India newspaper, she called for clear and decisive moves towards self-rule. Until the end of her life, Besant campaigned for India's independence, not only in India, but also on the tours of Britain. We salute her love and zeal for Indian independence.
और अब बात खेल खबरों की, तो चेन्नई में बांग्लादेश के साथ पहले क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत ने दूसरी पारी में ताजा समाचार मिलने तक 3 विकेट खोकर 78 रन बनाए हैं। इससे पहले बांग्लादेश की टीम पहली पारी में 149 रन बनाकर आउट हो गई। और अब हम आगे बढ़ते हैं, याद करते हैं उन महान लोगों को जिनका आज जन्मदिन, जयंती या पुण्यतिथि है। रंगमंच के गुजरे जमाने के प्रसिद्ध कलाकार और निर्देशक दिनेश ठाकुर को हम याद कर रहे हैं, आज इनकी पुण्यतिथि है। उन्होंने कई हिंदी फिल्मों में अभिनय किया। बासु चटर्जी की फिल्म रजनीगंधा के लिए उन्हें फिल्म फेयर पुरस्कार मिला था। रजनीगंधा के अलावा दिनेश ठाकुर ने मेरे अपने और घर जैसी कई सफल फिल्मों में काम किया। उन्होंने 1978 में आई फिल्म घर की पटकथा भी लिखी और कहानी भी उन्हीं की थी। इस फिल्म को 1989 में फिल्म फेयर बेस्ट स्टोरी का अवार्ड मिला और अन्य फिल्मों में उनकी शामिल है 1978 में आई मधुमालती और इसी वर्ष आई थी गीतांजलि। और तेलुगु फिल्म जगत के अभिनेता और जाने माने निर्माता नागेश्वर राव की आज जयंती है। इन्हें कला के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान के लिए भारत सरकार ने 2011 में दूसरा सर्वश्रेष्ठ नागरिक सम्मान पद्म विभूषण और 1990 में भारतीय सिनेमा का सर्वोच्च सम्मान दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया।
And today we are paying tributes to Anoop Kumar, who was an Indian actor who appeared in over 65 Bollywood films. He is the second youngest of 4 siblings, the other being Ashok Kumar, Sati Devi and Kishore Kumar. So here, why don't we listen to this beautiful song from the movie Dekh Kabira Roya.
पायल की झनकार लिए कौन आया।
हिंदी सिनेमा के निर्माता, निर्देशक एवं पटकथा लेखक महेश भट्ट आज अपना जन्मदिन मना रहे हैं और शुरुआती निर्देशन करियर के दौरान उन्होंने कई बहुप्रशंसित फिल्में दी हैं, जिनमें शामिल हैं अर्थ, सारांश, जानम, नाम, सड़क और जख्म। इन्होंने मंजिलें और भी हैं 1974 में आई थी जो फिल्म, इससे अपने निर्देशन की शुरुआत की थी। और उनकी पहली बड़ी हिट फिल्म की अगर हम बात करें तो अर्थ थी। फिल्म नाम को भी काफी पसंद किया गया था।
हम तेरे बिन कहीं रह नहीं पाते।
इनके द्वारा निर्देशित फिल्म सारांश 1984 में जो आई थी, इसे मॉस्को अंतर्राष्ट्रीय फिल्म उत्सव में दिखाया गया था और साथ ही इसकी कहानी लिखने के कारण महेश भट्ट को सर्वश्रेष्ठ कहानी का फिल्म फेयर पुरस्कार भी मिला था। और श्रोताओं, अब समय हो रहा है कि हम आप सभी से अनुमति लें कार्यक्रम परिक्रमा यहीं समाप्त करने की। तो दीजिए अनुमति देवेंद्र त्रिपाठी और रेणु कटारिया को परिक्रमा कार्यक्रम यहीं संपन्न करने की। ये कार्यक्रम अगर आप दोबारा सुनना चाहते हैं तो लॉग ऑन कीजिए हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर। साथ ही आप हमारे मोबाइल ऐप newsonair पर भी हमारे कार्यक्रम 24 घंटे सुन सकते हैं। नमस्कार।